ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 140 आत्मसमर्पित माओवादियों ने आज रायपुर में देखी विधानसभा की कार्यवाही। कोरबा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के कुछ जिलों में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और हल्की बारिश होने की चेतावनी दी। और कल से शुरू होगा चैत्र नवरात्रि का पर्व। देवी मंदिरों में प्रज्वलित किए जाएंगे ज्योति कलश। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज 140 आत्मसमर्पित माओवादी सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे। इनमें 54 महिलाएं भी थीं। इन माओवादियों ने विधानसभा परिसर के अपने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप से भी मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि ये आत्मसमर्पित माओवादी समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के बाद आज विधानसभा का भ्रमण करने आए।
140 पुनर्वासित हमारे भाई बहने जो भटक गए थे, पुनर्वासित होकर वापस समाज से जुड़े हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं और आज विधानसभा भवन में आए हैं। ये बहुत खुशी का बात है, सबका बहुत स्वागत है। उन लोगों से हम लोग वार्तालाप भी किए हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा कि पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं, तो अब बहुत अच्छा उनको लग रहा है।
राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज स्कूलों के युक्तिकरण, जम्बूरी में भ्रष्टाचार, पेड़ों की अवैध कटाई सहित अनेक मुद्दे गूंजे। आज सदन में सुनील सोनी और राजेश मूणत सहित सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रदेश में स्कूलों के युक्तिकरण का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि युक्तिकरण के बाद स्कूलों की स्थिति खराब है। सुनील सोनी ने कहा कि बहुत से स्कूल जर्जर हैं। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि वे परीक्षण कराएंगे। उन्होंने कहा कि 10,500 से अधिक शालाओं का युक्तिकरण किया गया है, इनमें से अभी 166 स्कूल का उपयोग नहीं हुआ है। जहां खाली भवन है वहां स्मार्ट स्कूल और लैब बनाया जाएगा। चर्चा के दौरान आसंदी ने मंत्री को आगामी 30 मार्च तक सभी स्कूलों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच विपक्ष ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती, वेतन और नियमितीकरण का मुद्दा भी उठाया। विपक्ष ने मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने बालोद जिले में स्काउट और गाइड की जम्बूरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए जांच से इनकार कर दिया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम उसेंडी ने आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतर्गत कच्छे ओरी डोंगरी गांव में 5,000 पेड़ों की अवैध कटाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक निजी इस्पात संयंत्र ने यह अवैध कटाई की है। जवाब में वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस गांव के आरक्षित वनों में लौह अयस्क खनन के लिए करीब 33,000 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई थी। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन के दौरान करीब 2,800 पेड़ों का रिकॉर्ड नहीं मिला है। विधायक की मांग पर मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज से सदन में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। समाचार लिखे जाने तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार किफायती दरों पर रेल यात्रा को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आज संसद में हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेल बजट का आम बजट में विलय होने से 3 प्रमुख लाभ हुए हैं। उन्होंने भारतीय रेल के वर्तमान रूपांतरण को धीमी प्रगति से सुपर फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन को एक बड़ा बदलाव बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल आम आदमी और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं की आधुनिक, सुरक्षित और सुगम सवारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई के साथ ही लोगों को रोजगार से जोड़कर अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए लगभग 195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से राज्य के 139 नगरीय निकायों में विकास कार्य किए जाएंगे। यह राशि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आभार जताया है। रीवा और रायपुर के बीच मंगलवार से हवाई सेवा शुरू हो गई है। सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट चला करेगी। एलायंस एयर द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार रीवा से यह विमान शाम 5:50 पर रवाना होकर शाम करीब 7 बजे रायपुर पहुंचेगा। वहीं रायपुर से शाम लगभग 7:30 यह रवाना होकर रात 8:50 पर रीवा पहुंचेगा। कल रीवा हवाई अड्डे से इस सेवा का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री डॉ के राम मोहन नायडू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी वर्चुअल रूप से जुड़े। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ला पहली फ्लाइट से रीवा से रवाना होकर कल रायपुर पहुंचे। अपने रायपुर प्रवास के दौरान श्री शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से मुलाकात की। श्री शुक्ला ने कहा कि रीवा रायपुर के बीच विमान सेवा शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि रीवा से दुर्ग के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए भी सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरबा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र में कोयले से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। ये युवक पोटापानी गांव के रहने वाले थे और दीपका स्थित निजी कंपनी में काम पर जा रहे थे। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजे के ऐलान के बाद लोग शांत हुए और विरोध प्रदर्शन खत्म किया। पुलिस ने ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह तेज रफ्तार बस की टक्कर से साइकिल सवार 12 वर्षीय एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। इधर मुंगेली जिले के लोरमी में चारपहिया वाहन की चपेट में आने से दोपहिया सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित एक निजी अस्पताल में बीती रात सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन द्वारा सीवरेज टैंक की सफाई के लिए ठेका दिया गया था। टैंक की सफाई के लिए एक एक कर 3 सफाईकर्मी उतरे, लेकिन तीनों की ही टैंक के अंदर ही जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि मजदूर कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के थे और मामले की जांच की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में हुए राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक में निर्देश दिए हैं कि अब से प्रदेश में सेप्टिक टैंक की सफाई से पहले नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही अब प्रशिक्षित सफाईकर्मी ही अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से सफाई करेंगे। बिलासपुर जिले के बहुचर्चित नसबंदी कांड मामले में जिला न्यायालय ने करीब 11 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शैलेश कुमार ने इस मामले में सर्जन डॉक्टर आर के गुप्ता को दोषी मानते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में महावर और कविता फार्मास्यूटिकल के सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। गौरतलब है कि नवम्बर 2014 में बिलासपुर जिले के पेंडारी और पेंड्रा में सरकारी नसबंदी शिविर लगाया गया था। इस दौरान 100 से अधिक महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 15 महिलाओं की मौत हो गई थी। कल से चैत्र नवरात्र पर्व की शुरुआत होगी। इस दौरान मां शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाएगी। देवी मंदिरों में घट स्थापना कर ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए जाएंगे। नवरात्र पर्व को लेकर दंतेवाड़ा, रतनपुर और डोंगरगढ़ में स्थित शक्तिपीठों के अलावा अन्य देवी मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। नवरात्र को लेकर डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी का दरबार सज धज कर तैयार हो गया है। रेलवे प्रशासन ने पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के दौरान कुछ ट्रेनों का अस्थायी ठहराव डोंगरगढ़ में दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम में इन दिनों बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में नमीयुक्त हवाएं चल रही हैं। रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए रहे, वहीं मैनपाट में बीती रात बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के कुछ जिलों में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और हल्की बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 140 आत्मसमर्पित माओवादियों ने आज रायपुर में देखी विधानसभा की कार्यवाही। कोरबा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के कुछ जिलों में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और हल्की बारिश होने की चेतावनी दी। और कल से शुरू होगा चैत्र नवरात्र का पर्व। देवी मंदिरों में प्रज्वलित किए जाएंगे ज्योति कलश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।